السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور احسان اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبے کا، رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر امید باقی رکھتی ہے، اور اس کے اندر یہ احساس باقی رکھتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش، اور پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہو تو تم نے کچھ بھی نہیں کھویا ہے، اور اگر ساری دنیا تمہیں ملتی ہو اور اللہ کا رحم و کرم تم سے دور ہو جائے، اس کی عنایتیں، اس کی توجہ تم سے دور ہو جائے، تو پھر سب کچھ تم رکھ کے بھی کسی چیز کے مالک نہیں. یہ وہ احساس ہے جو مومن کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جو غفلت آ جاتی ہے اسے دور کرتا ہے، اور بار بار اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، جو دنیا میں بھی رحم کرنے والی ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں چلتی. اس کی قدرت کے سامنے کسی کی طاقت اور کسی کا زور نہیں چلتا. یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے ایک ایسے دور میں، ایک ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف ایک شور ہے، اور ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جسے ہم دونوں کے درمیان ایک جنگ اور ایک ٹکراؤ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس معنی میں کہ مظلوم نے اپنا حق پہچانا ہے اور اس کے لیے لڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اسے آگے لے جائے، اور ہر طرح کی جو ایسے رویے ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی چیز ایکسٹریم نہ ہونے پائے، چاہے وہ اس کے اندر ہونے والے جو سلوگنس ہوتے ہیں وہ، یا جو باتیں وہاں کی جاتی ہیں وہ، نہ وہ ایسی ہوں کہ اسلام سے دور لیتی جائیں، نہ وہ ایسی ہوں کہ ایسی پہچان اچانک سامنے آ جائے کہ جو اس وقت ہمارے کاز کو نقصان پہنچانے والی ہو، اس کے لیے بہت حکمت کے ساتھ اور بہت ہی پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ چلنا ضروری ہے. لیکن اس درمیان ایک چیز جو کھوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ جب شور ہوتا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے اندر طاقت آ گئی ہے، میرے اندر زور پیدا ہو گیا ہے، میری آواز سے آواز ملانے والے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کسی سے ٹکرا سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آدمی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो होनी थी वो हुई और इसे आगे जाना चाहिए। न ये काफ़ी था कि इंसान सिर्फ दुआ करता और कोई इकदाम ना करता, किसी किस्म का स्टेप ना लेता, कुछ ना सोचता, वो घरों से ना निकलता। लेकिन घर की ख़वातीन ने और छोटे छोटे बच्चों ने हमें यह सबक सिखाया कि हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और जब एक शख्स, कमज़ोर इंसान भी आवाज़ लगाता है तो लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं और उसको समझते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उसे क़ुव्वत मिल रही है, एक तहरीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि जब हम इस शोर में होते हैं, और हम तकरीबन 5 हफ्तों से इसी पर बात कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा, अपने दिल की कैफियत भी देखी हम सब लोग, कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह के चौखट पर झुकने और उसको वक्त देने, उसके सामने रोने का जो हिस्सा होता है वो कम होता चला जा रहा है, या तवज्जो और उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से लगाने का जो एक हमारा ईमान है वो कहीं कमज़ोर पड़ जाए, कहीं ये होने लगे कि हम ये समझने लगें कि माशाल्लाह हम बहुत बहुत कामयाबी के साथ आगे जा रहे हैं और कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब हम फाते हो गए, और इस किस्म के ख्यालात कहीं हमें ऐसी जगह ना ला खड़ा कर दें कि जहां अल्लाह की मदद से कहीं हम दूर ना हो जाएं। नऊज़ुबिल्लाह। जो कुरान मजीद ने कहा, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पर तुम्हारी मदद की है। وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, حُنَيْن کے دن بھی جب غزوہ حُنَيْن ہو رہا تھا, اس وقت بھی جب اس دن تمہیں تمہاری کثرت نے غافل کر دیا تھا, بہت خوش تھے تم اس بات پر کہ آج ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, آج ہمارے اندر بہت تعداد ہے ہماری, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہاری تعداد نے یا تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین جو بہت پھیلی ہوئی ہے, اس میں بہت جگہ ہے, بہت کشادہ ہے, اس کے باوجود تمہیں ایسا لگنے لگا کہ تنگ پڑ گئی ہے, میری تعداد بہت زیادہ ہے, طاقت ہے ہمارے پاس, وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ تم ہار رہے ہو, شکست کھا رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل کیا, ایک سکون کی کیفیت, ایک دل کا اطمینان, ایک راحت, ایک خوشی اپنے رسول پر نازل کی, ایمان والوں پر نازل کی, اور اپنی طرف سے ایسی فوجیں اللہ نے بھیج دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, تم نے نہیں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے اپنا لشکر بنا لے, جس چیز کو چاہے اپنی فوج کے طور پہ استعمال کر لے, جس چیز سے چاہے اپنا کام لے لے, وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ کی مخلوق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا, جو اسلوب تھا, جس وقت آپ کو ایک طاقت حاصل ہو گئی تھی اور 8,000 کے قریب تعداد تھی, کوئی معمولی تعداد نہیں تھی, اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر تشریف لے جا رہے ہیں اور مکے میں داخل ہو رہے تھے, اس وقت تواضع کی وجہ سے, مسکنت کی وجہ سے, جھکاؤ کی وجہ سے, اور اللہ کے سامنے ایک طرح کی مسکنت, کہ اللہ میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, یہ سب آپ کا کرم ہے, اس عاجزی کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کا سر آپ کی اونٹنی سے لگا جا رہا ہے, بالکل ایک جھکاؤ تھا آپ کے اندر, اکڑ نہیں تھی. دنیا کے جتنے بھی فاتحین ہیں, دنیا میں جتنے لوگوں کو بھی کامیابی ملی ہے اور جن کے پیچھے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی, ان کے اندر ایک ایگو پیدا ہو جاتا تھا, انا پیدا ہو جاتا, ایک غرور اور پندار پیدا ہو جاتا تھا. آج آپ دیکھیے کہ ملک میں کیسے دندنا رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس میجورٹی ہے, وہ 300 کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فوج ہے, پولیس ہے, کیسی کیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں, ماریں گے تو تمہاری نسلیں یاد کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ طریقہ کبھی بھی طریقہ ان لوگوں کا نہیں رہا کہ جو لوگ اپنے مالک اور خالق کو یاد رکھنے والے ہیں. ایک مسلمان کو کبھی بھی یہ لینگویج اور یہ طریقہ یا اس طرح کا اسلوب बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक रंग होता है, एक माहौल होता है, लेकिन दिल हमेशा जुड़ा रहे अल्लाह ताला से। दिल हमेशा इस बात पर मुतमईन रहे कि तुम कुछ भी कर लो, और तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, जिस तरह से मेहनतें कर लो, दिमाग का इस्तेमाल करो, अक्ल का इस्तेमाल करो, प्लानिंग करो, मंसूबे करो, दौड़ो, भागो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, जितनी किस्म की तहरीकें हो सकती हैं चलाओ जो ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये चीज़ें तुम्हें कामयाबी दिला देंगी। इसके साथ तुम्हारे गुनाह भी चल रहे हों, इसके साथ तुम्हारी नमाज़ें भी छूट रही हों, इसके साथ तुम्हारे जो गैर इस्लामी रवैये हैं और तौर तरीक़े हैं वो सब चल रहे हों, तुम्हारा इसराफ भी चल रहा हो, तुम्हारी नाज़ेबा हरकतें भी चल रही हों, तुम्हारी बेजा जो बेपर्दगियाँ हैं वो चल रही हों, तुम्हारे जो गैर इस्लामी तौर तरीक़े हैं वो चल रहे हों, और उन सब के साथ इंसान को ये इत्मीनान हो कि आज हमारे साथ ताकत है, जो कि अभी भी बहुत थोड़ी है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा जाता है कि इस गफलत में बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने उन जज्बात को बार बार हासिल करें, उन खोए हुए जज्बात को जो हम रमज़ान में जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, जो तहज्जुद के ज़रिए से पैदा होते हैं, जो एतिकाफ़ के ज़रिए से पैदा होते हैं, और बड़ी मुश्किल से हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून हासिल होता है, हमारी आँखें तर होती हैं, अल्लाह के सामने रोने के लिए ये आँखें तैयार होती, अल्लाह के सामने जब आँखें रोने की आदी बन जाती हैं तो फिर उससे दिल को तकवियत मिलती है, दिल को ग़िज़ा मिलती है। जब दिल को ग़िज़ा मिलती है तो इंसान के अंदर से बुज़दिली ख़त्म होती है, इंसान के अंदर से खौफ ख़त्म होता है, इंसान के दिल को अल्लाह ताला मजबूत कर देते हैं। दिल मजबूत होता है तो कदम जमते हैं। वरबतना अला कुलूबिहिम, सूरह कहफ़ की फजीलत है, जुमे के दिन आप देखिए कि उनके बारे में फरमाया गया कि ये जो सात जो नौजवान थे, इज़ुल फितयतु इलल कहफ, जब वो ग़ार की तरफ गए और फिर उनका किस्सा कुरान ने बयान किया कि इज़ क़ामू फ़क़ालू, खड़े हुए और उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज, कि हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, उसके अलावा हम किसी को नहीं पुकार सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो हद से बढ़ने वाले होंगे। तो कुरान रबतना आला कुलूबी, कि हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, उनके दिलों को मजबूत कर दिया, चूँकि वो एक ऐसी चीज़ के मुकाबले में खड़े हुए थे जो अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह के एक होने को चैलेंज करने वाला तर्स था, उसके मुकाबले में वो खड़े हुए, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर मजबूती पैदा फरमा दी। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे माहौल में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, ये समझ दी कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने को तैयार हुए, हम अपनी ज़बान के इस्तेमाल के लिए तैयार हुए, हम अपने कलम के इस्तेमाल के लिए तैयार हुए, बरसों से जो जंग आलूद हो चुकी थी ज़बानें और कलम, और वो ख़वातीन और बच्चे और मर्द और बूढ़े जिनके दिलों के अंदर लगता था कि जैसे कि खौफ बैठ गया अनजाना सा, और कोई मार देगा, बर्बाद हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, कल को किसी दुश्मन के इंतज़ार में बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने एक ख़ास अपना फ़ज़ल फरमाया है कि वो जो खौफ की एक कैफियत थी जो आम थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही। जितना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जाए उतना ज़्यादा हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना है, अल्लाह ताला के सामने रोना है, उसके सामने गिड़गिड़ाना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, नादिम होना है अल्लाह के सामने, शर्मिंदा होना है। इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़ उस आंसू से ज़्यादा महबूब नहीं है जो इंसान तन्हाई में अल्लाह के सामने जब रोता है और वो आंसू उसके चेहरे को तर कर देते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि لا يلج النار رجل بكى من خشية الله, कि जो शख्स भी अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रो पड़ता है वो हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। حتى يعود اللبن في الزرع, यहाँ तक कि जैसे जानवर के थन से दूध निकाल लिया जाता है, वो दूध दोबारा जानवर के थन में वापस नहीं हो सकता, उसके जिस्म में दोबारा नहीं जा सकता। ऐसे ही जैसे ये चीज़ नामुमकिन है, वैसे ये नामुमकिन है कि एक गुनहगार इंसान अल्लाह के खौफ से रो पड़े, अल्लाह के जलाल से रो पड़े, अल्लाह की अजमत को सोच के रो पड़े, उसकी कुदरत को सोच के रो पड़े, उसके जलाल को सोच कर, और सब कुछ उसकी नेमत मिलने के बावजूद उसके खिलाफ गुनाह और उसके खिलाफ बगावत, और उसकी नाफरमानी की जो संगीनी है और उसके जो खतरात हैं उसको सोच कर रो पड़े, ये दो चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती। फरमाया गया कि ऐसा शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा ही नामुमकिन है जैसे ये नामुमकिन है कि दूध के थन से जब एक बार निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं होता। गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, बशारत दी उन लोगों को कि जो अपने गुनाहों को याद करके कभी अल्लाह की नेमत के एतराफ़ में उसका शुक्र अदा करते हुए, कभी अल्लाह की खुसूसी मदद को देखते हुए, कभी अल्लाह की कुदरत पर गौर करते हुए, एक एक चीज़ पर गौर, कभी कुरान की तिलावत करते हुए, कभी सजदे में, कभी चलते फिरते, कभी अपने जिस्मो जान पर गौर करके रो पड़ता है इंसान कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा बनाया, कितनी सारी नेमतों से नवाजा है और क्या क्या हमें अता कर दिया है, क्या हम इसके मुस्तहिक थे, क्या हम इसका हक़ अदा कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, लैस शैउन अहब इलल्लाह मिन क़तरतैन व अथरैन, कि अल्लाह के नज़दीक दो क़तरे और दो निशान से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। क़तरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ और उसके डर और उसके लिहाज में जो आँखों से बहने वाले आंसू होते हैं ये क़तरा, व क़तरतु दमिन फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जो खून बहे वो ख़तरा, इन दो ख़तरों से ज़्यादा अल्लाह को कोई चीज़ महबूब नहीं। व अम्मल असरान फ़असरुन फ़ी सबीलिल्लाह व असरुन फ़ी फ़रीदतिन मिन फ़राइज़िल्लाह, और जहाँ तक दो निशान का ताल्लुक़ है तो एक निशान वो जो अल्लाह के रास्ते में निकल कर अल्लाह के दीन की मदद के लिए जब इंसान चलता है और उसके क़दम के छाप पड़ते हैं और उसका जो असर बाकी रह जाता है आइंदा लोगों के लिए और जो असरात पड़ते हैं दूसरों, और वो जो अल्लाह के किसी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए वो करता है, कभी वालदैन के हुकूक़ अदा करने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी मईशत और कारोबार के लिए जाता है, जो ज़िंदगी का जो काम है उसको बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए जब हुस्न नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ उस काम को करता है, इन क़तरों से और इन निशानात से अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, बहुत से लोगों ने किताब लिखी है, हीन बकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, कभी इस नाम से किताब लिखी, हीन ज़हिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, मुख्तलिफ़ मौके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ पर तबस्सुम फरमाया, कहाँ कहाँ आप मुस्कुराए, उसको एक किताब में जमा कर दिया गया, कहाँ कहाँ पर आप रो पड़े, अब तन्हाई में जो रोते थे, तहज्जुद में रोते थे, और जो बद्र में आप रोए, और जो मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में रोए तन्हाई में, वो तो सरमाया है पूरी उम्मत के लिए, और आज तक आपकी आपकी जो आपका जो गिरिया है और आपका रोना और तड़पना है अल्लाह के सामने, उसका कोई ना कोई हिस्सा हम सबको नसीब है। लेकिन वो जो आप मजलिस में कभी बात करते हुए किसी ऐसे तज़किरे से रो पड़ते थे, मजलिस वालों पर उसका असर पड़ता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ इब्ने मसूद हमें कुरान पढ़कर सुनाओ, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अक़्रा अलैका व अलैका उन्ज़िल, क्या मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊँ, कुरान आप ही पर नाजिल हुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, मुझे पसंद है कि मैं कुरान दूसरे से पढ़कर सुनाऊं, कोई और पढ़े और मैं सुनूं। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की, जब मैं इस आयत पे पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा, वो कैसा दिन होगा कि जिस दिन हम हर उम्मत पर एक गवाह बुलाकर लाएंगे, हर उम्मत पर उसके नबी को लाएंगे और आपको इस उम्मत पर गवाह बनाकर लाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने पलट कर देखा, फ़ैज़ा आईना हो तज़रिफ़ान, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बह पड़ी, रोने लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे इस उम्मत पर गवाह बनना है, मैंने पैगाम पहुँचाया इस उम्मत को, ये उम्मत मेरी है, ये क्या करेगी, किस तरह अल्लाह के सामने जवाब देगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच कर रो पड़े। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत उबई बिन काब जो वही लिखते थे, बहुत से उन सहाबा में थे जो वही लिखते थे, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उबई इब्ने काब, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमसे कुरान पढ़कर सुनूं, मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, मुजाकरा करूं। तो उबई बिन काब कहने लगे, अवसम्मानी रब्बी, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है, मेरा नाम लेकर कहा है कि मैं आपको कुरान सुनाऊं, आप मुझे कुरान सुनाएं। जुकिर तो इंद रब्बी, क्या मेरा नाम मेरे रब के सामने आया है। रावी कहते हैं फबका उबई फैज़ा आईना हो तजरब, उबई रो पड़े, इतनी ज़्यादा खिदमात थी उनके कुरान मजीद के लिए। लेकिन इस बात को सोच के कि रब के सामने, हम में से हर शख्स का तस्करा हमारे रब के सामने आता है, जैसे हम अल्लाह का तस्करा कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। जब कोई तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह ताला तन्हाई में उसको याद करता है, जब किसी मजलिस में याद कर उससे बेहतर मजलिस में याद करता है तो अल्लाह ताला हमारा तस्करा फरमाते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। इसका एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें याद फरमाता है, बार बार हमें आवाज़ देता है, हमें बुलाता है, रात के आखिरी पहर में आवाज़ देता है कि है कोई जिसने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, कोई जिसको कोई ज़रूरत है आकर मेरे सामने मांगे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। हम खुदा न खास्ता किसी भी दुनिया की भीड़ में अल्लाह के इस चौखट को कभी नहीं छोड़ सकते। हम अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर जब तक हम रोने वाले न बने, जब तक अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगने वाले ना बने, दुनिया के सारे असबाब, सारे तज्जिए, जितने एनालिसिस हैं, जो असबाब हैं, दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, सब अपनी जगह पर है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इंसान कोशिश करे, कोशिश के मुताबिक उसके नतीजे निकलते हैं। लेकिन एक मोमिन में और एक गैर मोमिन में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि वो काम करता है अपने जिस्म जान से, लेकिन उसका दिल अपने रब के साथ जुड़ा हुआ होता है। وَقَلْبُهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى رَبِّهِ, उसका दिल हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, उस पर भरोसा रखता है कि ये अंधेरी शब हमेशा अंधेरी रहने वाली नहीं है, सुबह का उजाला आएगा, और जो इस उजाले को पैदा करने वाला है वही वो उजाला लाने वाला है, जो अंधेरियां लाता है वही उन अंधेरियों को दूर करता है। ये अहले ईमान का खासा है, ये मोमिन का इम्तियाज़ है कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, लरस जाते हैं। وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, जब उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उसके ईमान की कैफियत में इजाफा होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के साथ उनके साथी सफ़र में थे, वो दिल में बार बार कहते, मैं सोचता था कि आखिर क्या चीज़ है जो इब्ने मुबारक को लोगों में इतना मकबूल बनाती है, इतनी लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, इतनी लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, हर जगह इनके लिए ऐसा लगता है कि दिल से लोगों को मोहब्बत है। हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, फला काम हम भी करते हैं, हम भी सदका करते हैं, हम भी जिहाद करते हैं, सारे काम हम करते हैं, इब्ने मुबारक से ऐसी मोहब्बत क्यों है? कहने लगे कि उसी वक्त अंधेरा हो गया, अचानक चिराग बुझ गया, देर लगी दोबारा चिराग जलाने में, अचानक जब कोई चिराग लेकर आया जो घर का मालिक था तो देखते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। थोड़ा मौका मिला तो अल्लाह से लौ लगा लिया, अल्लाह के सामने रोने लगे, तवज्जो कर ली अल्लाह की तरफ। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस दिन अल्लाह के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक साया बचा सकेगा महशर के मैदान में, उस दिन जिन सात लोगों को अल्लाह के अर्श के साये का साया नसीब होगा, अल्लाह ताला हम सब लोगों को उनमें शामिल फरमाए, उनमें एक शख्स ऐसा भी होगा कि रजुल ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त आइना, ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता था तो रो पड़ता था, उसकी आंखें बह पड़ती थी, वो अल्लाह से कभी गाफिल नहीं होता था। ये नहीं होता था कि वो मजलिस में तो ठीक हो लेकिन जब तन्हाई में जाए तो अल्लाह को भूल जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, मेरे भाई और दोस्तों, हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये अभी यौम जमहूरिया का मौका था, रिपब्लिक डे होने वाला है, आप में से जो हमारे सामीन हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो सब इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और आजकल इन्हीं चीज़ों के तذکرے चारों तरफ चल रहे हैं। मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको दोहराने के बजाय एक ऐसे पहलू की तरफ, मैं खुद ज़ाती तौर पर महसूस कर रहा था कि तवज्जो हम लोगों की बढ़ती जा रही है और कहीं इस भीड़ के अंदर हम अपनी नमाज़ों में जो हमारी कैफियत होनी चाहिए, जो हमारी इबादतें होनी चाहिए, मस्जिद से जो हमारा लगाव होना चाहिए और लोगों के बीच भी जो कैफियत और रुजू अल्लाह की तरफ होना चाहिए, अल्लाह से लौ लगाने की जो कैफियत होनी चाहिए, वो ज़रूरी है कि बाकी रहे। اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے اور ہمیں کامیاب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.